ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्तश्च ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तवी गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये अधिक मास है और इस अधिक मास का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम मास और ये बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि जो भगवान जगन्नाथ हैं उनका भी नाम क्या है पुरुषोत्तम श्री पुरुषोत्तम या फिर भगवान जिस धाम में निवास करते हैं उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ऐसे पुरुषोत्तम मास में परम भगवान पुरुषोत्तम देव का लीला कथा को श्रवण करना ये परम लाभदायक है। जैसे कि परीक्षित महाराज मृत्यु के कगार में खड़े थे, उनके पास बहुत कम दिन बचे थे और ऐसे परीक्षित महाराज ने एक बड़ा निडर होकर डिसीजन लिया। कभी कभी हमें अपने जीवन में निडर होकर डिसीजन लेना होता है ना, आर या पार। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज को पता चला कि उनकी जो मृत्यु है उड़ने वाले तक्षक के द्वारा होने वाली है, तो वो भयभीत नहीं हुए। उन्होंने सोचा ये संकट आया है तो इसको मैं स्वीकार करूंगा भगवान की कृपा को देखते हुए, क्योंकि कृष्ण अल्टीमेट कंट्रोलर है। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने क्या किया, जैसे उनको पता चला उन्होंने तुरंत ही अपने राजपाट कारोबार संपदा आदि का त्याग किया और तुरंत गंगा के किनारे चले गए और वहां जाकर जो भगवान के महान भक्त हैं श्री शुकदेव गोस्वामी उनके चरणों का आश्रय ग्रहण किया। शुकदेव गोस्वामी को मिलने से पूर्व परीक्षित महाराज एक चीज, बाकी वहां कई सारे ऋषि मुनि थे अन्य, उनसे कहते हैं कि मैं तो भयभीत नहीं हूं अपनी मृत्यु से, मुझे वो उड़ने वाले तक्षक डस के मुझे मारेगा उससे भी भयभीत नहीं हूं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप जैसे भक्तों के आश्रय में हो और आप क्या करो मेरे लिए एक वस्तु करो, गायतः विष्णु गाथा, मेरे लिए विष्णु का गुणगान करो। ऐसे परम भगवान विष्णु के गुणगान को मैं श्रवण करना चाहता हूं। हाँ? बल्कि परीक्षित महाराज को एक प्रकार से सॉल्यूशन पता था। जैसे व्यास देव भी जब उन्होंने बहुत सारे पुराण आदि ग्रंथों की रचना की और सरस्वती के तट पर बैठे हुए थे तो उनको लगा इतना सब कुछ मैंने किया लेकिन फिर भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं है, क्यों मेरे मन में असंतोष है, क्यों मैं शोक कर रहा हूं, इतना मैंने सबके लिए किया। तो फिर वो सोचने लगे कि अपनी समस्या का कारण क्या है। तो फिर उनको एक श्लोक याद आया, वो सोचने लगे हैं न प्रायेण निरूपिता किंवा भागवत धर्मा न पायेण निरूपिता, मैंने जो परम भगवान कृष्ण है उनका यथोचित जितना कृष्ण का गुणगान करना चाहिए उतना मैंने कृष्ण का गुणगान नहीं किया है, बाकी सब चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, लेकिन साक्षात परम भगवान व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है उनका गुणगान नहीं किया है। और फिर नारद आते हैं तो नारद भी कहते कि हाँ सही है, तुमने क्या नहीं किया है, कृष्ण का गुणगान नहीं किया है। इसलिए कई सारे पुराण है। फिर व्यास देव ने अंतिम स्थिति में अपने आध्यात्मिक जीवन के परिपक्व अवस्था में श्रीमद् भागवतम की रचना की, और ऐसा भागवतम कोई सर्वसाधारण पुराण नहीं है, सारे पुराणों को पुराण कहा जाता है लेकिन भागवतम को महापुराण कहते हैं शास्त्र, क्योंकि भागवतम का एक ही उद्देश्य है केवल 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 कृष्ण का गुणगान करना और किसी का नहीं, यह भागवतम की विशेषता है। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के चरणों में बैठते हैं और उनको पूछते हैं अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, हे योगियों के परम गुरु मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, मैं मृत्यु के नजदीक हूं। तो ऐसे परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी देते हुए कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देह पूज्यश्च नित्यदः, तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे परीक्षित भगवान सबके आत्मा है। और ऐसे परम भगवान कृष्ण जो हरि है उनके बारे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तीन चीजें करनी चाहिए। यदि व्यक्ति इस संसार के भय से रहित होना चाहता है सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, श्रोतव्य भगवान के बारे में सुनना चाहिए अधिक से अधिक, भगवान की महिमा नाम रूप गुण लीला धाम आदि को हम सुनते हैं तो भगवान के सन्निकट हम जाते हैं, भगवान को अपने निकट हम अनुभव करते हैं। और दूसरी चीज वो कहते हैं श्रोतव्य के बाद व्यक्ति को कीर्तितव्य शरण, कीर्ति का मतलब क्या है या कीर्तन का मतलब क्या है, कीर्तन मीन्स कीर्ति का गान करना उसे कीर्तन कहते हैं। भगवान के चार प्रकार के कीर्तन है, नाम कीर्तन है, रूप कीर्तन है, गुण कीर्तन है, लीला कीर्तन है, रूप गोस्वामी कहते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए, हमेशा उत्साहित होना चाहिए। और दूसरा है भगवान का गुणगान करना चाहिए अपने जीवा से जितना अधिक संभव हो। प्रभुपाद ने कहा चलो कोई नहीं है तो खुद ही दीवारों को प्रवचन दो, कृष्ण हमेशा अपना गुणगान सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, कृष्ण ही नहीं सारे देवतागण आते हैं प्रवचन सुनने के लिए। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लेक्चर दे रहे थे तो उस समय उनके मठ में कम ब्रह्मचारी थे, कम भक्त थे, तो 10-1 भक्त थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन देने के लिए बैठे तो उनके एक शिष्य ने एक कारपेट डाल दिया कि सोचा रे 10 ही भक्त हैं छोटा सा कारपेट डालते कि उतने बैठ जाए। भक्ति सिद्धांत महाराज गुस्सा हो गए, इतना छोटा सा कारपेट क्यों डाला, तो उन्होंने कहा गुरुदेव केवल 10 ही भक्त हैं, गिने चुने पूरा मंदिर में उतने ही बैठने वाले हैं, और क्या करना है बड़ा कारपेट डाल के। उन्होंने कहा मूर्ख तुम समझते नहीं, जहां कृष्ण का गुणगान होता है कृष्ण की महिमा का वर्णन होता है वहां सारे भगवान के पार्षद देवतागण सब क्या करते हैं दौड़ते हुए आते हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण करते हैं भगवान की महिमा को सुनने के लिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति को भगवान की महिमा को सुनने की लालसा रखनी चाहिए और भगवान की महिमा अपने जिह्वा के द्वारा गुणगान करने के लिए सदैव उत्साहित होना चाहिए। यदि हम सर्वश्रेष्ठ शुद्धि अनुभव करना चाहते हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्य देह पूज्यश्च नित्यदः, और भगवान का पूजन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बनो, मध्याजी माम नमस्कारो, मुझे नमस्कार करो। तो इस प्रकार से भगवान हमें अपना जो जीव का जो जैव धर्म है, जीव का असली धर्म है, उसकी शिक्षा देने के लिए हम क्या करते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करके जगन्नाथपुरी में, और वहां निवास करके चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के माध्यम से भगवान के दिव्य कार्यकलापों को निरंतर सुना करते थे। गदाधर पंडित से सुनते थे, सार्वभौम भट्टाचार्य से सुना करते थे, रामानंद राय से सुना करते थे, स्वरूप दामोदर से सुना करते थे, और भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रवण करने से ही भगवान के प्रति उनका जो तीव्र अनुराग है वो उत्पन्न होता था। और वास्तव में श्रवणम के कोई देवता है तो वो कौन है, कौन है, भगवान जगन्नाथ है। कृष्ण अपनी महिमा को श्रवण करने की क्या लालसा एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, उसके एक में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वही कृष्ण जगन्नाथ के रूप में है। कृष्ण कैसे हैं, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर रूप, जिन्होंने मुरली का वादन कर रहे हैं, ऐसे खड़े हैं। लेकिन वही कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही अलग है, जिसमें ना उनके हाथ में हाथी नहीं है तो बांसुरी कैसे पकड़ेंगे, पाव ही नहीं है तो टेढ़े कैसे खड़े रहेंगे। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के रूप में परिवर्तित हो जाता है उनका एक दिव्य देह। केवल किससे परिवर्तित होता है, श्रवणम से। वही कृष्णा जब रोहिणी से अपनी ही लीला को सुनते हैं तो क्या होता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो उसी प्रकार से हम सब अपने जीवन में चेंज चाहते हैं, हाँ परिवर्तन चाहता है कि नहीं व्यक्ति, कब से लाइफ ऐसे कैसे घिसा पिटा जा रहा है, कुछ तो बदलाव लाना है। इसलिए हम कपड़े बदलते रहते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, जूते बदलते हैं, सब कुछ बदलते रहते हैं, हाँ। लेकिन वास्तव में कुछ असली परिवर्तन हम आकांक्षा करते हैं तो वो संभव है केवल श्रवणम से। तो भगवान अपनी ही महिमा को सुनते हैं और परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है उसको स्थापित करते हैं। और ऐसे भगवान की ये जो लीलाएं हैं वो अति दिव्य है। इसलिए भगवान कृष्ण के जो कार्यकलाप है या भगवान जगन्नाथ की जो लीला है उसको कहते हैं प्रेम लीला कहानी। कौन सी कहानी, हम हमेशा स्टोरीज सुनना चाहते हैं ना, कहानियां सुनना चाहते हैं, बचपन से स्कूल में या फिर मित्रों से, माता पिताओं से। तो उसी प्रकार से हमें कुछ कहानी सुनने की इच्छा है तो वो किसकी कहानियां सुननी चाहिए, भगवान जगन्नाथ देव या भगवान कृष्ण के जो लीला कथा है उसको सुनना चाहिए। और ये कार्यकलाप, ये जो कहानी है वो किस पर आधारित है, प्रेम के ऊपर आधारित है। और ये प्रेम किसके बीच में है, भगवान का अपने भक्त के बीच में। तो भक्ति क्या है कि भगवान और उनके भक्त के बीच जो आदान प्रदान है प्रेम का, उसे क्या कहते हैं, भक्ति कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के ऐसे दिव्य कार्यकलाप हैं जिनको हम प्रयास करेंगे थोड़ा बहुत आज सुनने का और थोड़ा बहुत कल श्रवण करने का। तो परीक्षित महाराज कहते हैं सुनवता श्रद्धया नित्या ग्रणतच्च सुचेष्टितम् कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। भगवान को सही में किसके हृदय में इच्छा है कि मुझे ना भगवान को अपने हृदय में लेके जाना है। मंदिर हमें क्यों आना चाहिए? भगवान को अपने साथ ले जाने के लिए। किसलिए आना चाहिए? किसलिए आना चाहिए? हाँ, जैसे दो लोग मंदिर गए थे, द्वारका मंदिर। कौन? दुर्योधन और अर्जुन गए थे कि नहीं? तो हमें मंदिर आना चाहिए भगवान को अपने साथ वापस ले जाने के लिए। अधिकतर लोग मंदिर आते हैं, भगवान को यहीं रखना चाहते हैं और पूरे परिवार के साथ सुखरूप सुव्यवस्थित कहां पहुंचना चाहते हैं? घर में। भगवान को घर में ले जाऊंगा या जाऊंगे तो फिर सेवा करनी पड़ेगी, नियमों का पालन करना पड़ेगा, बहुत सारा झंझट है। हाँ, भगवान नहीं चाहिए। आप मंदिर में कितने अच्छे सजे धजे रहते हो, यही शोभायमान हो। घर में आपकी कोई आवश्यकता फिलहाल तो कोई आवश्यकता नहीं है। जब थोड़ा बहुत कष्ट आ जाए तो फिर हम पुकारते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर आना चाहिए भगवान को हमें ले जाने के लिए। लेकिन भगवान को कैसे ले जा सकते हैं? हम अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? भगवान को ले जाया जा सकता है केवल श्रवणम के विधि से, हृदय में ले जाया जा सकता है। भगवान को आप रस्सी लाकर, प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मंदिर आते से मैं रस्सी लेकर आता हूं कंधे में और सोचता है कि कहता है कि भगवान अभी मैं बांधता हूं और ले जाता हूं आपको। नहीं, भगवान को बांधना है, ले जाना है तो परीक्षित महाराज कहते हैं क्या करना होगा? सुन्वतः श्रद्धया नित्यम। कितने शब्द है ये? तीन। कौन कौन से? सुन्वता, श्रद्धया, नित्यम। बोलिए। हाँ, हमें भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए श्रद्धा के साथ। और कभी कभी नहीं, नित्यम, चाहे हम अपने घर में क्यों ना हो तो भी भगवान के बारे में रोज चाहे ऑडियो सुने लेकिन सुने। हाँ, इसलिए वो कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति करता है श्रद्धा के साथ नियमित रूप से श्रवण करता है तो क्या होगा? परीक्षित महाराज कहते मैं ये अनाउंसमेंट करता हूं, काले न अति दीर्घे न, समय नहीं लगेगा यदि वो सिंसियर डिवोटी है। समय नहीं लगेगा, काले न अति दीर्घे न, भगवान विशते हृदय, भगवान उसकी कहां बैठ जाएंगे? हृदय में, और हृदय में लेके चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जन्म कहां हुआ है? जेल में हुआ है। भगवान का जन्म कहां हुआ है? जेल में। तो भगवान को जेल में रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है उसका हृदय भी जेल है और ऐसे जेल से मैं इजीली बाहर नहीं निकल पाता। भगवान को कोई बेल भी नहीं दे सकता। यदि भक्त अपने हृदय में बांध ले प्रेम के रज्जुओं से तो उनको कोई निकाल नहीं सकता। तो ऐसे ही भगवान जो जगन्नाथ है उनके पास सब कुछ है लेकिन एक चीज की कमी है। कौन सी चीज की कमी है? वो एक चीज अपनी छोड़कर। जगन्नाथ भगवान कहां के भगवान है? द्वारका के। कहां के? द्वारका में उनका एक परिवर्तन हो गया था। तो इसलिए भगवान ऐसे जो जगन्नाथ है और उनका धाम है और उनके जो भक्त हैं, ये तीनों को समझना अत्यधिक कठिन है। कौन सी तीन चीजें जिनको समझना कठिन है? भगवान जगन्नाथ को और उनका धाम जगन्नाथपुरी और तीसरा उनके भक्त। जो व्यक्ति जगन्नाथपुरी गया है तो वे तीन चीजों को समझ सकता है कि जिनको समझना बहुत कठिन है। एक तो सोचो उनके जो भक्त है वहां पंडा लोग हैं, वो जब आपके साथ व्यवहार आदि करते हैं तो आप डरने लगते हो। हाँ, तो उनको समझना बहुत कठिन है। एक तो वो जगन्नाथपुरी धाम को समझना जानना भी अत्यधिक दुर्लभ है और तीसरा भगवान जगन्नाथ स्वयं। मुझे याद है मैंने पहली बार भगवान जगन्नाथ के विग्रह को देखा होगा तो मुंबई में जुहू की रथ यात्रा में, नया नया इस्कॉन से जुड़ा होगा, 6 महीने हुए थे तो भक्तों ने कहा रथ यात्रा चलते हैं। मैंने कहा चलो। हाँ, तो हम रथ यात्रा पहुंचे तो वहां मुझे लगा कोई कृष्णा होंगे, राधा कृष्ण होंगे, जगन्नाथ रथ यात्रा है। तो ये जगन्नाथ भगवान है, लेकिन वो भगवान कुछ पहचाने नहीं जा रहे थे, वो कुछ चित्र विचित्र ही लग रहे थे। बड़ी बड़ी आंखें और ऐसे कुछ लंबे से आगे हाथ हैं और आधा ही बॉडी है। फिर उनके साथ एक पीली पीली सब पीला है ना, कौन है पीली? सुभद्रा देवी है, वो भी बैठी हुई है और उनके उस तरफ बलराम जी भी बैठे हैं। अभी इन तीनों का कोई ज्ञान नहीं था। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ को समझना भी बहुत अधिक कठिन है, उनके इस दिव्य रूप को जानना भी। इसी कारण से उनका जो प्राकट्य है वो अति गोपनीय है। कैसा है जगन्नाथ का प्राकट्य? बहुत अधिक गोपनीय। ऐसे भगवान जगन्नाथ के बारे में व्यास देव ने कई सारे पुराणों में लिखा हुआ है। विशेष रूप से उन्होंने लिखा है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है। कितने हैं? 81,000 श्लोक, जिसमें एक एक भाग है वैष्णव खंड, जिसमें जगन्नाथ के बारे में प्रचुर मात्रा में लिखा गया है, उनका धाम, उनका वर्णन आदि। तो ऐसे व्यास देव ने इन पुराणों में भगवान जगन्नाथ के बारे में वर्णन किया, और वर्णन करते हुए उन्होंने एक महान राजा इंद्रद्युम्न का जो कथा है उसका वर्णन करते हैं। बल्कि जब इस संसार की सृष्टि हुई और सर्वप्रथम जो जीव है ब्रह्मा, उनका प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा को सेवा दी कि आप क्या करो, इस सृष्टि का आगे विस्तार करो या निर्माण करो। तो फिर ब्रह्मा लगे हुए थे, तो ब्रह्मा ने अचानक सोचा कि मैं इतना भयानक ये संसार या सृष्टि का सृष्टि बना रहा हूं, ऐसे जीवों के लिए जो भगवान से अलग होकर इस संसार में आके केवल 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 कष्ट ही प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे लोगों को मैं और जकड़ने के लिए, बांधने के लिए, कष्ट भोगने के लिए कुछ बना रहा हूं। तो ब्रह्मा का हृदय मान नहीं रहा था। ब्रह्मा अंदर से दुखी हो गए कि कैसा मैं कठोर व्यक्ति हूं, मैं संसार का सृष्टि कर रहा हूं, बल्कि जो जीव आएंगे और इसमें फंसेंगे, सड़ेंगे और दुख प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने स्टॉप कर दिया। ब्रह्मा ने कहा अभी मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। भगवान से प्रार्थना की। भगवान से प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, हे कृष्णा, मुझे बहुत अधिक दुख हो रहा है इस संसार का निर्माण करने से, क्योंकि मैं जानता हूं यहां जो भी आएगा वो कष्ट प्राप्त करेगा और उसका कारण कौन हो? मैं हूं। तो उन्होंने प्रार्थना की और भगवान से कहा कि हे कृष्णा, आप बताओ कि क्या करने से सरलता से जो जीव है इस भौतिक सागर से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान स्वयं कृष्ण उनको, ब्रह्मा को सर्वप्रथम ये ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा को भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, कि मेरा एक ऐसा धाम है जिसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। क्या नाम है? पुरुषोत्तम क्षेत्र। मेरा एक ऐसा धाम है पुरुषोत्तम क्षेत्र, कोई व्यक्ति वहां जाने की इच्छा भी व्यक्त करता है तो भी व्यक्ति इस संसार से मुक्त हो सकता है। क्या करने से? डिजायर करने से। भौतिक इच्छा करना ही बंधन का कारण है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक इच्छा करने से हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति केवल ये इच्छा करता है, मैं भी उसका जाना भी ना हो, लेकिन वो इच्छा करते हैं कि अरे रथ यात्रा तो अभी आ रही है, मुझे जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। इतना केवल डिजायर करने मात्र से भगवान अपनी असीमित कृपा उस पर प्रदान करते हैं। और भगवान कहते हैं ब्रह्मा को, कोई व्यक्ति उस स्थान में जाता है और केवल मेरा दर्शन करता है और मेरे उच्चिष्ट प्रसाद को ग्रहण करता है, वो इस संसार से सरलता से मुक्त हो सकता है। इसलिए जगन्नाथ देव के बारे में कहा गया है तव दर्शनात् मुक्ति। किसके दर्शनात् मुक्ति? भगवान जगन्नाथ देव। हाँ, इसलिए जगन्नाथपुरी जो धाम है वहां कोई व्यक्ति जाता है तो उसे केवल दो कार्य करने चाहिए। दो कार्य कौन से हैं? उस व्यक्ति को अधिक से अधिक भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहिए, जितना भी हो सके। इन आंखों का अक्षनो फलम, आंखों का फल क्या है? परम भगवान जगन्नाथ को बारंबार देखना। और जिह्वा फलम, जिह्वा का फल क्या है? उनका जो अर्पित उच्चिष्ट प्रसाद है उसको ग्रहण करना। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी, और कलयुग के विग्रह कौन से हैं? भगवान जगन्नाथ है। जैसे हर युगों में भगवान स्वयं निवास करते थे इस पृथ्वी में, एक स्थान में, द्वापर में, ब्रज में उन्होंने निवास किया या द्वारका में निवास किया, सत्ययुग में भगवान वहां निवास करते थे बद्रीनाथ आदि, रामेश्वरम में भगवान त्रेता युग में भी रहे। तो उसी प्रकार से कलयुग में भगवान सदैव जगन्नाथपुरी में अपने जो बहन है सुभद्रा और बलराम के साथ नित्य रूप से निवास करते हैं। तो इस कारण से व्यक्ति जगन्नाथपुरी जाता है और ये दो कार्य अधिक से अधिक नहीं करता तो वो व्यक्ति वास्तव में जगन्नाथपुरी नहीं गया है। इन दो कार्यों को अधिक से अधिक भगवान जगन्नाथ की कृपा लाभ करने हेतु करना चाहिए। तो जब ब्रह्मा ने ये सुना तो ब्रह्मा के अंदर ये इच्छा हो गई कि मुझे उस स्थान में जाना चाहिए जिस स्थान का नाम, दूसरा एक नाम है नीलाचल, नील वर्ण का आचल मीन्स पर्वत। एक ऐसा पर्वत है जो नील वर्ण का है जहां भगवान नील माधव के रूप में निवास करते थे शुरुआत के समय में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट होने से पूर्व। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य होता है और फिर कल उनकी बहुत अलग अलग लीलाओं का वर्णन करेंगे संक्षिप्त में। तो जब ब्रह्मा ने सोचा कि मुझे उस स्थान में जाना चाहिए तो उसी समय यमराज भी वहां आ गए। यमराज वहां आए और भगवान ने कहा मैं अपने धाम के बारे में ज्यादा अधिक नहीं बोलूंगा, मैं ये कार्य किसको देता हूँ? लक्ष्मी को देता हूँ। तो फिर लक्ष्मी देवी इतना बड़ा प्रवचन देने लगी केवल जगन्नाथपुरी के बारे में, इतना लंबा, कई अध्यायों में लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथपुरी की महिमा का वर्णन किया। लक्ष्मी देवी ने कहा कि हे यमराज, क्योंकि यमराज और ब्रह्मा दोनों एकत्रित हो गए और इन दोनों निकल पड़े जगन्नाथपुरी की यात्रा में, और जगन्नाथपुरी का वो जो स्थान है नील पर्वत, वहां जब पहुंचे, वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक कौवा एक टहनी के ऊपर बैठा हुआ था और बैठते ही उसको नींद आ गई। क्या हो गई? नींद आ गई। जैसे प्रवचन में नींद आ जाती है ना, अभी टहनी के ऊपर बैठा है, नींद आते ही वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ऐसा कौवा जब गिर पड़ा, जोर से नीचे सरोवर था उसमें, और उस सरोवर का जल जैसे स्पर्श हो गया तुरंत वो चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गया। और भगवान के दिव्य धाम से एक आध्यात्मिक विमान आता है और कौवे को लेकर कहां पहुंच जाता है? वैकुंठा। तो ये देखकर यमराज ब्रह्मा ने अपने मुंह में उंगली डाल दी, उन्होंने सोचा ये क्या है, अहो आश्चर्य, अहो आश्चर्य, जो कौवा मांसाहारी है, दुराचारी है, वो भी ऐसे क्षेत्र में केवल वहां का जो कुंड है रोहिणी कुंड उसके जल का स्पर्श करने मात्र से भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सोचा कि कितना सरल है जीवों को भगवान के पास वापस जाने के लिए। तो यमराज और ये चिंतित हो गए। तो लक्ष्मी देवी कहती है कि ये जो स्थान है मेरा धाम जगन्नाथपुरी, ये आप यमराज आपके क्षेत्र से बाहर है, आपके कंट्रोल से बाहर है। यहाँ जो भी जीव आता है वो यमराज के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए चैतन्य भागवत में दो तीन अध्याय में जगन्नाथपुरी का वर्णन है जिसमें वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो भी व्यक्ति निवास करता है वो सर्व साधारण मनुष्य नहीं है, इवन वहां का गधा भी, चैतन्य भागवत में आया है गर्धो व्योपी चतुर्भुजा, कि वहां का गधा भी कैसे है? चार भुजाओं वाला है। तो आकाश में जब देवतागण जगन्नाथपुरी को देखते हैं ऊपर से, तो वहां सारे लोग चतुर्भुज नजर आते हैं, चाहे वहां का गधा हो, गाय हो, कुत्ता हो, वहां के पंडास हो, गमछा डाल के भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो सारे क्या है, चार भुजाओं वाले हैं, भगवान के अपने अनुचर हैं, भगवान के अपने पार्षद हैं। जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं या किसी भी धाम में जाते हैं, तो वहां के लोगों का आकलन करना शुरू करते हैं, जज करना शुरू कर देते हैं, कमियां ढूंढते हैं, निंदा करते हैं, चुपके से गालियां भी देते हैं। हाँ, तो लेकिन वास्तव में ये महान अपराध है, अपने अधोगति को आमंत्रित करना है। तो ऐसे ही रामानुजाचार्य स्वयं जब जगन्नाथपुरी पहुंचे और उन्होंने वहां जगन्नाथ की इस प्रकार की सेवा देखी, तो उन्होंने कहा ठीक ढंग से सेवा नहीं हो रही है, अब मैं सिखाऊंगा कैसे सेवा की जाती है। राजा को कहा पंडों को ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की आवश्यकता है, हम कहते ना ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, तो वैसे रामानुजाचार्य ने कहा इनको तो ट्रेनिंग एंड एजुकेशन चाहिए, मैं सिखाऊंगा उन्हें पंचरात्रि की विधि के अनुसार कैसे सेवा की जाती है। तो महाराज जो राजा धीराज थे वहां के, उन्होंने कहा ठीक है आप सुबह सुबह आइए मंगल आरती से पहले, सारे पंडित आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो रामानुजाचार्य अपने मठ में रात्रि में सो गए और सुबह सारे पंडा लोग उठ के लाइन में खड़े हो गए वहां मेन गेट जो है सिंह द्वार पर, और हाथ जोड़कर इंतजार कर रहे थे रामानुजाचार्य का। और 6 बज गए, मंगल आरती का टाइम चला भी गया, तो भी रामानुजाचार्य का आगमन नहीं हो रहा था। तो वहां फिर उनके मठ में जाकर या रूम में जाकर चेक किया, तो वहां रामानुजाचार्य नहीं है। रामानुजाचार्य ने जब अपनी आंखें खोली सुबह, तो उन्होंने देखा कि मैं जगन्नाथपुरी में नहीं हूँ, विशाखापट्टनम के पास श्रीकाकुलम एक स्थान है, वहां एक छोटा सा गांव है कोरमा क्षेत्र, उस गांव में एक छोटे से मंदिर में रामानुजाचार्य अपनी आंख खोल रहे थे। उन्होंने देखा कि अरे मैं कहां सो रहा था और कहां जग रहा हूं। तो भगवान जगन्नाथ ने क्या किया, रामानुजाचार्य को रात्रि में ही उठाया और इतना दूर फेंक दिया, हाँ, कि वो क्या ढूंढ रहे थे, उनके भक्तों में गलतियां ढूंढ रहे थे। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद, हाँ, उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि, जिसका वर्णन चैतन्य भागवत में आता है। एक दिन वो सुबह सुबह गदाधर पंडित के साथ जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए गए और वहां उस समय एक फेस्टिवल हो रहा था, जगन्नाथपुरी में उत्सव ही उत्सव है, उस फेस्टिवल का नाम था ओणन षष्ठी। ठंडी से ठंडी शुरू होते ही ये फेस्टिवल होता है ओणन षष्ठी। ओणन षष्ठी से भगवान को गर्म जो वस्त्र है वो पहनाए जाते हैं, स्वेटर शॉल वगैरह वगैरह। तो वो जो वस्त्र पहनाना शुरू हो रहे थे, तो ये पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित के साथ खड़े होते, उन्होंने कहा देखो ये कैसे पंडाज है, ये जो वस्त्र है माड़ 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 है उनमें, हाँ, जो स्टार्च होता है इसको धोना चाहिए फिर पहनाना चाहिए, कैसे ये पुजारी है, उनके बारे में कुछ बोलने लगे। तो भगवान जगन्नाथ सोच सुन रहे थे, मेरे सामने मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, हाँ, तो भगवान जगन्नाथ क्या ने सोचा, अभी आप अपने रूम में चले जाओ फिर मैं देखता हूँ। तो पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित अपने स्थान चले गए यमेश्वर टोटा में, पुंडरीक विद्यानिधि सो गए और सोते ही रात्रि जब मध्य रात्रि का समय हो गया, तो ये तीनों एक साथ पहुंचे, ये अकेले अकेले घूमने के लिए नहीं निकलते, निकलते नहीं, कौन कौन निकलते, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो ये तीनों पुंडरीक विद्यानिधि के घर में पहुंचे, पुंडरीक विद्यानिधि आराम से रेस्ट कर रहे थे और उस समय जगन्नाथ जी बड़े गुस्से में थे, उनके छाती में बैठ गए, कहां बैठ गए, छाती पर, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है। ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि को जगन्नाथ देव मारते जा रहे थे, थप्पड़ के बाद थप्पड़, इतने थप्पड़ मारे सुभद्रा तो मां का हृदय है, उन्होंने कहा छोड़ो गलती हो गई उनसे, क्षमा करो चलते हैं, बहुत हो गया। तो पुंडरीक विद्यानिधि सुबह उठते हैं तो देखते पूरा दोनों गाल लाल और ऐसे हो गए हैं, जब वो बाहर निकले गदाधर पंडित कहते क्या हो गया पुंडरीक विद्या ने दिया आपको, हाँ तो उन्होंने जो भी घटित हुआ था वो सब वर्णन किया। तो इस प्रकार से भगवान का जो धाम है वो वास्तव में केवल 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 भगवान के अपने अंतरंगा शक्ति के कंट्रोल में है, किसी और के नहीं, और परम भगवान स्वयं उनके स्वयं के कंट्रोल में है। तो इस प्रकार से वहां ना देवी देवता आदि उनका कुछ कार्य चलता है, तो फिर भगवान या स्वयं लक्ष्मी देवी स्वयं राजा इंद्रद्युम्न के बारे में बताना शुरू करती हैं। वो कहती है कि किस प्रकार से ये जो भगवान ये जो स्थान है जगन्नाथपुरी प्रकाशित होगा सारे संसार में, और हर कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ की कृपा को अनुभव करेगा और उनकी कृपा को प्राप्त करेगा। तो फिर वर्णन करते हुए महाराज इंद्रद्युम्न का वर्णन करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक महान राजा थे उज्जयिनी या अवंती देश, उज्जैन जो आज कहा जाता है, अवंती के राजा जिनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। महाराज इंद्रद्युम्न की खासियत क्या थे, उन्होंने अपना महल बनाया था लेकिन जहां वो निवास करते थे पर्सनली उसी के पास ही एक 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 बड़ा सा एक स्थान बनाया था, जहां उनका रूम था उस रूम के पास ही ऐसे बड़े बड़े कमरे बनाए थे, और वो कमरे केवल वैष्णवों के निवास के लिए, जो भी तीर्थ यात्रा करते हुए भक्त लोग आ रहे भ्रमण करते हुए उनको वहां रुकवाते थे। तो ऐसे महाराज इंद्रद्युम्न जब उनके हृदय में हमेशा एक इच्छा थी कि मैं अपने जीवन में भगवान को एक बार जरूर फेस टू फेस देखना चाहता हूं। कैसे देखना चाहता हूं, साक्षात भगवान को देखना चाहता हूं। कितनी बड़ी इच्छा है, ये कोई छोटी सी इच्छा थोड़ी है, भगवान को डायरेक्ट फेस टू फेस देखना चाहता हूं। तो ऐसी उनकी इच्छा थी। और फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, अपनी इस इच्छा को सारे मंत्रियों के समक्ष राज दरबार में प्रकट किया, और फिर उस समय जब बोला तो सारे मंत्री अचंभित हो गए कि राजा की ये कैसी इच्छा है, हमारा जीवन देखे तो हम भगवान को वैसे देखना नहीं चाहते। तो वहां इतनी बड़ी इच्छा उनके थे, तो अचानक जो तीर्थ यात्री उनके वहां रुके थे उनमें से एक आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि महाराज मैं बताता हूं वो स्थान जहां आप स्वयं भगवान को कैसे देख सकते हो, फेस टू फेस डायरेक्ट देख सकते हो, और मैं ये कोई धन प्राप्ति की इच्छा से आपको नहीं बता रहा हूं, या फिर मुझे कुछ भौतिक लाभ चाहिए उसके लिए नहीं बता रहा हूं, मैं स्वयं उस स्थान में निवास करके आया हूं नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, और भगवान वहां अभी नील माधव के रूप में निवास करते हैं, जो नील वर्ण के हैं, जो शंख चक्र गदा पद्म जिन्होंने हाथ में रखा है, नीलाचल पर्वत पर रोहिणी के उनके तट पर वो निवास करते हैं। तो ये सब बताया तो महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा कि मैं उस स्थान में जाना चाहता हूं, परम भगवान का दर्शन लाभ करना चाहता हूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि कौन व्यक्ति है जो इस स्थान को ढूंढ ले, तो फिर अलग अलग मंत्रियों को भेजा गया अलग अलग स्थानों में, और फिर उनके एक आखिरी मंत्री थे जिनका नाम क्या था, विद्यापति। क्या नाम था, आप सब परिचित है लेकिन फिर भी हम इसको श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे विद्यापति को ये बोला कि आप क्या करो, जाओ उस स्थान को ढूंढो। तो विद्यापति जब रात्रि में सो रहे थे उन्होंने सोचा कि कितना मैं भाग्यशाली हूं, मुझे परम भगवान को ढूंढने की सेवा मिली है, उनके उस धाम में जाने की अनुमति मिली है, मैं सुबह होते ही वहां दौड़ूंगा उस दिशा की तरफ और भगवान नील माधव का दर्शन कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से विद्यापति दूसरे दिन सुबह निकलते हैं और ऐसे भ्रमण करते करते महानदी के तट पर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जो अभी है ओडिशा, वहां वहां के नजदीक पहुंचते हैं, और जैसे विद्यापति वहां पहुंचते हैं वहां पहुंचकर रात्रि हो जाती है उन्हें, तो विद्यापति एक छोटा सा गांव देखते हैं, एक छोटा सा गांव, उस वो गांव था शबर बस्ती थी, आदिवासी लोग वहां निवास करते थे, विद्यापति तो ब्राह्मण थे विद्यापति ने सोचा कि मैं कहां निवास करूं जो मेरे लिए उचित हो सके, तो उस गांव के जो मुखिया थे, जो हेड थे, जिनका नाम था विश्ववसु, तो सारे लोगों ने कहा कि गांव का जो मुखिया है उनका घर ये है विश्ववसु का, आप जाइए वहां निवास कीजिए। तो विश्ववसु के घर में वो पहुंचते हैं, तो उस समय हम घर में उनकी जो पुत्री थी ललिता, और उसी समय विश्ववसु जंगल से वापस आते हैं रात्रि के समय में। घर में जैसे प्रवेश करते हैं तो ये विद्यापति अचंभित होकर देखता है कि ये जो विश्ववसु आदिवासी हेड है इस गांव का, ये जैसे ही आया तो इसके शरीर से इतनी सुगंध निकल रही है, तो ये आश्चर्य व्यक्त करने लगे। और फिर समय के अनुसार उन्होंने एक दिन पूछा कि मैं यहाँ निवास करना चाहता हूं, और विश्ववसु वहां उनको निवास करने की अनुमति देते हैं। और कुछ स्थानों में वर्णन आता है कि विश्ववसु उनकी कन्या ललिता से विवाह करते हैं, और ललिता की सहायता लेकर वो विश्ववसु को मनाते हैं, और ललिता को पूछते हैं कि आपके पिता रोज घर छोड़कर चले जाते हैं और लंबे समय के बाद वापस आते हैं, वो कहां जाते हैं? और जब वो वापस आते तो बहुत अमूल्य प्रसाद अपने साथ लेकर आते हैं, उनके शरीर से कस्तूरी सुगंध आदि निकलता है। तो ललिता उस विद्यापति जो मंत्रित है उनको कहते हैं कि मेरे जो पिता है वो नील माधव की सेवा करने के लिए जाते हैं नीलाचल पर्वत के ऊपर। तो एक दिन फिर इनके साथ विश्ववसु के साथ ये विद्यापति भी पहुंचते हैं, और विद्यापति जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो नील माधव का दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद पद्म पुराण में वर्णन आता है कि बहुत बड़ी आंधी आती है सुनामी जैसी, और भगवान उस स्थान से परमानेंटली अप्रकट हो जाते हैं नील माधव के रूप में। अप्रकट होने के बाद भगवान के जो सेवक थे जिनका नाम था विश्ववसु, वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे विश्ववसु, मैंने तो तुमसे बहुत सिंपल सेवा ली है, लेकिन मैं अभी बहुत ऐश्वर्यमय सेवा को स्वीकार करना चाहता हूं। और किनसे स्वीकार करना चाहता हूं? अवंती के जो राजा है इंद्रद्युम्न, उनसे मैं ऐश्वर्यशाली सेवा को स्वीकार करना चाहता हूं, और मैं इंद्रद्युम्न को यहां लाना चाहता हूं। तो इस न्यूज को लेकर विद्यापति भगवान का बड़ा माला लेकर उज्जैन पहुंचते हैं, और फिर उस समय राजा इंद्रद्युम्न अपने सारे रानियों के साथ, पहले तो उन्होंने कहा मैं अकेला जा रहा हूं, रानियों ने कहा नहीं हम भी आपके साथ आएंगे, तो सारा जो प्रजा था उन्होंने कहा हम भी अवंती में नहीं रहेंगे, हम भी महाराज इंद्रद्युम्न के साथ भगवान नील माधव का दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो सारी उज्जैन के सारी प्रजा निकल पड़ती है जगन्नाथपुरी की ओर, और जैसे जगन्नाथपुरी के पास वो पहुंचते हैं महानदी के किनारे, तो उन सबको पता चलता है कि भगवान परमानेंटली उस स्थान से अप्रकट हो गए हैं, अभी उनका दर्शन प्राप्त करना असंभव है। तो फिर ये जो महाराज इंद्रद्युम्न थे वो अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, और वो सोचते कि मैं अपने प्राणों को त्याग देता हूं, भगवान का यदि मैं दर्शन नहीं कर पाता। तो उस समय भगवान उनको आश्वासन देते हैं नारद मुनि के द्वारा कि आप क्या करो, फिर भी उस नीलाचल क्षेत्र में प्रवेश करो, वहां प्रवेश करके जाकर सर्वप्रथम एक यज्ञ करो, भगवान उस यज्ञ से प्रकट हो जाएंगे। तो आप जगन्नाथपुरी गए हो तो वहां एक मंदिर है गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा मंदिर वो वास्तव में महावेदी उसे कहा जाता है, वो स्थान है जहां क्या किया था महाराज इंद्रद्युम्न सर्वप्रथम पहुंचे थे, और उस स्थान में जाकर नारद आदि की सहायता से महाराज इंद्रद्युम्न ने क्या किया, विशाल यज्ञ किया, और उस यज्ञ से सर्वप्रथम जगन्नाथपुरी में भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। किसका प्राकट्य हुआ? नरसिंह देव। आज भी आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो गुंडीचा मंदिर के पास ही नरसिंह मंदिर है, तो जिनको यज्ञ नरसिंह कहते हैं, तो वहां उन्होंने यज्ञ आदि किया, और जिससे भगवान नरसिंह का प्राकट्य होता है। और भगवान के लिए फिर उन्होंने विशाल मंदिर का निर्माण किया। वो सारे तो हजारों हजारों साल, ये सारी घटना सत्य युग की है। तो ऐसे इंद्रद्युम्न ने भगवान के लिए विशाल मंदिर बनवाया और फिर भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ कृष्ण के रूप में, तो बहुत दुखी हो गए थे। तो भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि मैं तो दारू से बनाया जा सकता हूं, दारू में लकड़ी, लकड़ी के द्वारा मेरे विग्रह का निर्माण करो। ऐसे तीन लकड़ियां समंदर से बहते हुए आएंगे, उन पर शंख चक्र गदा पद्म का निशान होगा और वो सब आएगी कहां, चक्र तीर्थ में, वहां एक स्थान है चक्र तीर्थ, वहां आएगी। तो आप क्या करो, उन लकड़ियों को लेकर आओ और अपने महल में उनके द्वारा आप मेरे विग्रह का निर्माण करो। तो फिर राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति और विश्ववसु की सहायता से सुवर्ण रथ पर उन लकड़ियों को रखते हैं और अपने महल में लाते हैं। और फिर महल में लाने के बाद वो सोचते हैं कि इनका विग्रह बनाने चाहिए। तो कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान एक वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम महाराणा था, जिनके रूप में प्रकट होकर स्वयं अपना विग्रह निर्माण के लिए आए। कई ग्रंथों में वर्णन आता है कि विश्वकर्मा स्वयं आए एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में, और उन्होंने शर्त रखी कि मैं इन विग्रहों का निर्माण एकांत में करूंगा, बंद कमरे में, और कोई व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब ना करे। हाँ, यदि आप मुझे खोलोगे तो इन विग्रहों का निर्माण पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से उनका निर्माण कार्य शुरू होता है। एक वृद्ध जो शिल्पी है वो लकड़ियों से विग्रह निर्माण करना शुरू करते हैं। तो 10 दिन हो जाते हैं, 10 दिन के बाद आवाज आना बंद हो जाती है, खट 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 अंदर से आवाज आना बंद होती है। तो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी जिनका नाम क्या था, गुंडीचा, गुंडीचा से रहा नहीं जाता है, उन्होंने अपने पति के पीछे हाथ धो के लग गई, इंद्रद्युम्न महाराज के पीछे, देखो अंदर क्या हो रहा है, आवाज आना बंद हो गई है। वो बूढ़ा व्यक्ति है, शिल्पी मर गया होगा, उसको खाने के लिए नहीं है। तब इंद्रद्युम्न कहते नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, लेकिन गुंडीचा इतना पीछा लगी कि फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने एक दिन वो दरवाजे खोल दिए, और खोलते तो क्या देखते हैं, वहां वो शिल्पी नहीं है और वहां 3 विग्रह हैं, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। और वो एक प्रकार से जब इन्होंने देखा महाराज इंद्रद्युम्न ने पहली बार, तो देखते ही वो दुखी हो गए कि मैंने अपराध किया है, भगवान के विग्रह पूर्ण रूपेण बने भी नहीं और मैंने दरवाजे खोल दिए, ना उनको हाथ है, ना ठीक से आंख है, ना पाँव है, ना कुछ है। तो वो दुखी हो गए और उन्होंने सोचा मैं अभी किसी से बात नहीं करूंगा, अन्न आदि का त्याग करूंगा और मैं मरना चाहता हूं जल्द ही। तो ऐसी दुखी अवस्था में वह रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। तो उस समय नारद मुनि पहुंच जाते हैं। सबका सॉल्यूशन किसके पास है, नारद मुनि के पास। नारद मुनि कृष्ण लीला में फ्लेवर ऐड करते हैं, मसाला, हम सब्जी में मसाला डालते हैं तो टेस्ट बढ़ता है। तो नारद मुनि के बिना कृष्ण लीला अधूरी है, चाहे ब्रज लीला, द्वारका लीला, मथुरा लीला, राम लीला, कुछ भी लीला, हाँ सारी लीलाएं नारद के बिना अधूरी है। तो ऐसे नारद मुनि पहुंचे और नारद मुनि ने कहा, हे राजा इंद्रद्युम्न, आपको चिंता करने का कोई कारण नहीं है, तुम मत सोचो कि ये कुछ आधे आधे विग्रह है, नहीं, ये क्या है, पूरे हैं, पूरे भगवान हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा, कैसे कह सकते हो आप, कुछ प्रूफ है आपके पास, प्रमाण है? उन्होंने कहा, मेरे पास क्या है, प्रमाण है। तो फिर एक नई कड़ी, नई कथा नारद ने सुनाना शुरू की। नारद मुनि कहने लगे कि वास्तव में मैं हमेशा द्वारका में जाता हूं और मुझे द्वारका जाना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जहां जहां भवन में जाओ वहां वहां कृष्ण ही होते हैं अलग अलग रानियों के साथ। तो एक दिन
मैं द्वारका पहुंचा और मैंने मेरे हृदय में भावना आ गई थी कि वास्तव में ये जो रानिया है ये सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के डिवोटीज है। इनसे जैसा सौभाग्य संसार में किसी और का नहीं है जो भगवान कृष्ण के इतने करीब है, इनकी उनकी इतनी सेवा में लगी हुई है। नारद जाते और उनको प्रणाम करते रानियों को कि हो रानियों आप तो धन्य हो। तो रानियां कहती काहे के धन्य, हम कृष्ण के भक्त नहीं है, कृष्ण तो हमसे प्रसन्न नहीं है, हम तो पूरा प्रयास करती हैं चामर करना, उनको खिलाना पिलाना सुलाना, सब प्रकार की सेवाओं में लगी हुई है, लेकिन कृष्ण का मन हमें नहीं लगा। उनका मन किसी और में क्या है, सदैव लगा हुआ है। तो नारद पहुंचे थे रुक्मिणी देवी के महल में और रुक्मिणी देवी के महल में कई सारी रानियां अपनी अपनी परेशानियां लेकर वहां एकत्रित हो गई थी। वहां सत्य मामा कहती है, सबसे पहले तो रुक्मिणी ने कहा कि मैं अपनी ही बात बताती हूं, कल के रात की बात ले लो। हाँ, रुक्मिणी देवी कहती है जब मैं सो रही थी तो मध्य रात्रि में ये कृष्ण चिल्लाने लगते हैं, मेरा पदर खींचते हुए साड़ी का क्या कहते भाग, तो कहते हे यशोदा, हे यशोदा माता, मुझे मक्खन चाहिए, ब्रेड चाहिए। हाँ, तो मैं उठ के सोचती है क्या हो गया, अभी इनको मक्खन मुझसे मांगे, वो यशोदा से मांग रहे हैं। कहते हैं सोते हुए ये कृष्ण वृंदावन वासी का, वृंदावन वासियों का स्मरण करते हैं, कभी कभी यशोदा से मक्खन दूध दही मांगते हैं और कभी कभी मेरी वेणी को खींचते हैं और वो कहते कि हे राधा रानी, हे ललिता, हे विशाखा। कहते हैं कि ये द्वारका में है लेकिन किसके स्मरण में है, वृंदावन वासियों के। कभी कभी कहते कि हे सुबल, हे मधुमंगल, हाँ हे श्रीदाम, हे सुदामा, जल्दी जल्दी चलो, गव्य चराने का समय हो गया है। ये सब किस में हो रहा है, बेड के ऊपर, भगवान स्वयं हुए हैं। तो रुक्मिणी ऐसे बोलते जा रही है, बोलते जा रही है। सत्य बाबा कहते मेरे घर में भी ऐसे होता है, क्योंकि हर रानी के घर में क्या है, कृष्ण है, और हर घर में यही स्टोरी। और भगवान ऐसे ब्रजवासियों के विरह में इतना रोते हैं, सारे रानियों ने कहा कि भगवान का पिलो, भगवान का पेट गीला हो जाता है पूर्ण रूपेण। तो हम सोचते हैं कि कृष्ण हमारे नहीं है, और वास्तव में कृष्ण का हृदय और मन कहाँ है, वृंदावन में है। इसलिए भगवान जो जगन्नाथ है उनके पास एक चीज की कमी है। एक बार जगन्नाथपुरी का एक जो पंडा है वो जयपुर आया था, जयपुर एक महाराजा को मिलने के लिए, और वो आया तो जब पंडा को थोड़ी छुट्टी होती है पुजारियों को तो भ्रमण करते भारत में, तो जयपुर आया उस राजा को मिलने के लिए, उनको प्रसाद आदि दिया, कुछ दिन जयपुर में निवास किया। तो उस पंडा ने कहा अभी तो मैं अनुमति लेता हूँ, रथ यात्रा आने का समय हो गया है, अभी जा रहा हूँ मैं जगन्नाथपुरी वापस। तो उस राजा ने कहा ठीक है मैं कुछ आपके लिए धन आदि देता हूँ, और वो तैयारी कर रहा था निकलने की। उस समय वो जो राजा की पुत्री थी कन्या राजकुमारी, उन्होंने कहा मुझे भी जगन्नाथ के लिए कुछ देना है। अभी पंडा को लगा कितनी चीजें लेके जाओ, और उन्होंने उस राजकुमारी ने एक छोटा सा बॉक्स लाया, बहुत सुंदर कार्विंग किया हुआ था, और उसको पैक करके बंद करके वो जो पुजारी है पंडा उनके हाथ में रखा और कहा कि ये आप भगवान जगन्नाथ को दे दो। अभी इतना सुंदर वो बॉक्स था कि पंडा जी निकल पड़े जयपुर से, निकलते निकलते उनका बैग और छोटा सा बॉक्स लेकर पहुंचे। सारा ध्यान किसमें लगा हुआ था, बॉक्स में क्या है, बॉक्स में क्या है। ऐसे सोचते सोचते ये जगन्नाथपुरी के नजदीक पहुंच गए, 18 नाला जो ब्रिज है वहां वहां पहुंचे और मंदिर के पास आ गए। तो उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं रह नहीं सकता इसको खोले बिना, इस बॉक्स ने मुझे पूरे रास्ते में तंग किया है, अनकंट्रोल हो गए वो अपने आप। तो ऐसे उस पंडा जी ने बॉक्स को खोला उनको लगा कि उस राजकुमारी ने जगन्नाथ के लिए कुछ हीरे माणिक के जवाहरात आदि दिया हो, तो पुजारी को लगता है भगवान क्या करेंगे, वो किसका है, मेरा ही है। हाँ, तो उन्होंने सोचा देखो खोल के कुछ कर लेते, ले लेते उसे। तो जैसे उन्होंने खोला, खोलते ही क्या निकला, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा, इतना सा छोटा सा कागज का टुकड़ा। इतना गुस्सा आ गया उस पंडा को, राजकुमारी की ऐसी की तैसी पकड़ा उस पेपर को, ऐसे फेंक दिया रास्ते में, बक्से को भी एक कोने में फेंक दिया। और वो पुजारी थे, वो गए सुबह सुबह भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए। सारे जो महंतगण, सारे हेड पुजारी वगैरह सब आ गए भगवान की सेवा करने के लिए। अभी भगवान का उत्थान का समय हो रहा था, तो उस समय जब सारे खड़े हो गए भगवान के सामने, जगन्नाथ तो बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए हैं अंदर में। हाँ, तो वहां वो सब देखा तो एक चीज नजर आई सबको कि कुछ तो भगवान के यहाँ लगा हुआ है, कुछ तो कागज का टुकड़ा कहाँ लगा हुआ है, छाती पर लगा हुआ है। अभी बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा था, जिस पंडित ने ये काम किया था उसको समझ में आ रहा था कि ये जो कागज का टुकड़ा किसका हो सकता है, मैंने जो फेंका हुआ है वही कागज का टुकड़ा यहाँ आकर पहुंचा है सीधा भगवान के छाती हृदय में। हाँ, तो भगवान के हृदय में भगवान ने वो अमूल्य भेंट थी जिसको उन्होंने स्वीकार किए थे। तो अभी किसी एक पंडा ऊपर चढ़ा, हाँ वो गए और उन्होंने निकाला और निकाल कर देखा, पढ़ने की कोशिश की, तो वो जैसे पढ़ा उसमें उस राजकुमारी ने लिखा हुआ था। उस राजकुमारी ने लिखा था कि हे भगवान जगन्नाथ देव, आप सर्वे सर्वा हो, सारे जगत के स्वामी हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके पास नहीं है, मैं क्या आपको दूं। लेकिन हे भगवान जगन्नाथ, मैं जानती हूं एक चीज की आपके पास कमी है। कितने चीजों की जगन्नाथ के पास कमी है, एक चीज की कमी है। और मैं जानती हूं कि आपने अपना मन वृंदावन में छोड़ा है और आपके पास अपना मन नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रही हूं, अपना मन आपको दे रही हूं। हाँ, ये उसका गिफ्ट था, किसके लिए, भगवान जगन्नाथ के लिए। इसलिए भगवान भी गीता में क्या मांगते हैं हमसे, जहां जहां भगवान डिमांड करते हैं गीता में, वहां वहां कहते हैं मन दे दो मुझे, मन दे दो, हम सब कुछ देंगे। लेकिन क्या नहीं देंगे, भगवान मन नहीं दे सकता, सब कुछ ले लो, हाँ मन नहीं दे सकता। तो ऐसे राजकुमारी वास्तव में चतुर थे। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ, जिनका मन वृंदावन वासियों के विरह में अनित्य प्रति लगा हुआ है, तो ऐसे भगवान जब उस विरह भावना में द्वारका में निवास करते हैं और द्वारका की सारी रानियां इस रहस्य को जानना चाहती कि क्या ऐसी चीज है जो वृंदावन के भक्तों के पास है, जो हमारे पास नहीं है। तो एक दिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा महल है, उसमें सारे 16,100 रानियों को बुलाया गया और फिर रोहिणी को इनवाइट किया, क्योंकि रोहिणी वृंदावन में 11 साल उन्होंने निवास किया था और भगवान को बचपन से वृंदावन छोड़ने तक उन्होंने देखा था सारी लीलाओं को। तो ऐसी रोहिणी को लाया जाता है, सारी रानियां बैठी हुई है और रोहिणी को एक आसन प्रदान करते हैं जिसमें रोहिणी बैठती है और फिर बताना शुरू करती है कि क्या कारण है आपसे इतना प्रेम नहीं है, वृंदावन वासियों से भगवान कृष्ण का सर्वाधिक प्रेम है। तो उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया, लेकिन हम संक्षिप्त में वर्णन करते हैं। रोहिणी माता ने कहा कि वास्तव में वृंदावन वासियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट है, उनके जीवन का जो आधार है वो केवल कृष्ण है, उनके हृदय, उनका जो हृदय है, हृदय जो प्रेम जहां से उत्पन्न होता है वो भगवान को 100% है। लेकिन हे रानियों, आपका हृदय कृष्ण के लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास हर एक रानी को 12 संतान थे, हाँ 12 संतान थे, 12 या 11 थे, हाँ 11 थे, 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी हर एक रानी को। तो रोहिणी ने कहा कि आपके हृदय को आपने तो पहले ही 11 भागों में बांट दिया है और फिर एक भाग 12वां भाग किसको, कृष्ण के लिए। तो इसलिए आपका जो प्रेम है वो उनको भगवान को इतना अधिक आकृष्ट नहीं करता, इसलिए गोपियों का जो प्रेम है उसको शास्त्रीय भाषा में कहा गया है समर्था रति। रति मीन्स प्रेम, एक प्रेम का प्रकार है, कई सारे प्रेम के प्रकार है। समर्था रति मीन्स गोपियों का प्रेम समर्थ है जो कृष्ण को कंट्रोल कर सकता है, और वृंद द्वारका वासियों का प्रेम इतना सामर्थ्यवान नहीं है जो कृष्ण को पूर्ण रूपेण आकृष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से रोहिणी माता ये सब वर्णन करती है, और रोहिणी माता कृष्ण लीलाओं का वर्णन उन्हें शुरू करने से पूर्व कहा कि मैं तो कृष्ण का वर्णन करूंगी लेकिन कृष्ण कभी भी यहाँ आ सकते हैं, इसलिए कोई एक व्यक्ति दरवाजे में खड़ा होना चाहिए, जैसे कृष्ण आए तुरंत हमें बताएं कि कृष्ण आ गए हैं। तो इन सारे रानियों ने देखा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन था उस गैदरिंग में, सुभद्रा देवी। तो सुभद्रा देवी सबसे छोटी थी, तो छोटे व्यक्ति से घर के हम काम करवाते हैं तो सबने कहा सुभद्रा तुम जाकर दरवाजे में खड़ी हो जाओ और जैसे कृष्ण आएंगे हमें सूचना प्रदान करो। तो सुभद्रा देवी छोटी सी थी तो जाकर खड़ी हो जाती है और दरवाजे में खड़ी होकर क्या करती है, अंदर रोहिणी का प्रवचन सुनती है। ऐसे नहीं कि हम लोग बाहर खड़े होकर सुनते हैं, बल्कि ये कब से परंपरा चली आ रही है द्वारका से। तो रोहिणी ये जो सुभद्रा देवी है वहां खड़ी होती है और उस समय भगवान द्वारका में सुधर्मा सभागृह में थे और भगवान को तुरंत पता चला मेरे बारे में चर्चा हो रही है। जैसे हमें पता चलता है कोई मेरे बारे में चर्चा कर रहा है तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, नहीं तो वैसे भगवान कहते ना यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारदा जहां मेरा भक्त मेरे बारे में चर्चा करता है मैं संसार के सारे कार्य छोड़कर कहां पहुंचता हूँ, उस स्थान पर पहुंचता हूँ श्रवण करने के लिए। तो भगवान सुधर्मा सभागृह को छोड़ते हैं, बलराम का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए आते हैं और दौड़ते हुए आते हैं तो ये सुभद्रा देवी बहुत चतुर थी, उन्होंने कहा सीधा जैसे वंदे मातरम में खड़े रहते हैं ना दोनों हाथ नीचे करके, वैसे खड़े नहीं थे, वो ऐसे खड़े थे दरवाजे में एक हाथ ऊपर एक हाथ इधर एक पाव इधर एक पाव इधर, जैसे बच्चे होते हैं पिता ऑफिस से आते हैं तो बच्चा कहते ना पिताजी अंदर नहीं आना है, पूरा तो पाव फैला कर हाथ फैला कर। तो फिर जब भगवान आए उनको लगा था कि ये घुस सकते दोनों ओर से तो इसलिए वो ऐसे खड़े थे। तो भगवान आए बलराम और वो दो आकर उनके साथ खड़े हो गए श्री श्री राधे गोविंद देव के। तो उस समय जैसे ही भगवान आए बलराम के साथ और वो आकर उनके साथ खड़े हो गए और जैसे जैसे रोहिणी माता वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करते जा रही है वैसे वैसे ये तीनों उस लीला कथा को श्रवण करके इतने अधिक निमग्न हो गए कि महाभाव की जो दशा है उन्होंने प्रकट की और उस कृष्ण कथा को श्रवण करके स्वयं कृष्ण बलराम और सुभद्रा इन तीनों के हाथ उनके पांव वो सब क्या हो जाते हैं अंदर चले जाते हैं। और आश्चर्य से जब व्यक्ति बहुत सुख अनुभव करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, हाँ तो इनकी आंखें बड़ी हो गई। अभी इन दोनों को हाथ है लेकिन सुभद्रा देवी को हाथ नहीं है क्योंकि उसके हाथ ऐसे थे ना तो सीधा अंदर चले गए और यहाँ कृष्ण और यहाँ बलराम थे। तो ऐसे जब ये तीनों इस जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रूप में वहां खड़े हो गए बिना हाथ पाव आंखें बड़ी तो उस समय एक महान व्यक्ति वहां पहुंचे, कौन थे नारद, कौन थे नारद। वहां गुजर ही रहे थे तो नारद ने जोर से कहा मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, क्या कहा नारद ने? जोर से नारद ने जैसे बोला मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, कृष्ण की कृष्ण कॉन्शियस हो गए, अरे ये आवाज कहां से आ गई, हमें किसने देखा? हाँ, तो फिर नारद ने जैसे इन तीनों का रूप देखा, भगवान को पहली बार किसने इस रूप को देखा इस संसार में, तो वो नारद थे। फिर ना भगवान ने जब कहा नारद तुमने हमें तीनों को इस रूप में देख ही लिया है तो बताओ, हाँ कुछ कुछ वर मांग लो हमसे। तो फिर नारद ने कहा कि मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं, कि आपका ये जो रूप है तीनों का, ये किसी एक स्थान में विराजमान हो और इस रूप को देखने मात्र से इस भव सागर से जो जीव है क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, हाँ, और आपका दर्शन नित्य रूप से होता रहे। हाँ, तो फिर भगवान ने कहा मैं जरूर इस रूप में विशेष रूप से प्रकट होऊंगा और इस जगत के जीवों का उद्धार करने के लिए। तो ये जो सारी चीजें बहुत विस्तार से इंद्रद्युम्न ने सुनी, तो इंद्रद्युम्न महाराज आश्चर्य व्यक्त करने लगे और फिर महाराज इंद्रद्युम्न भगवान के लिए विशाल मंदिर बनवाते हैं और उनकी स्थापना करने के लिए ब्रह्मा को लाने के लिए सत्य लोग जाते हैं, लेकिन लाने के लिए गए तो ये मंदिर भी चला गया मिट्टी के अंदर। फिर आगे चलकर एक राजा हुए गलमाधव, वो अपने घोड़े पर जा रहे थे तो घोड़े का पांव बालू के ऊपर जो मंदिर का ऊपरी भाग है, क्या कहते हैं उसे, गुंबद, हाँ उससे लगता है, तो पता चलता है कि बालू के नीचे वो मंदिर है। उस मंदिर को निकालते हैं, फिर गलमाधव और इंद्रद्युम्न में थोड़ा सा डिस्कशन होता है कि मेरा मंदिर है, वो कहता मेरा मंदिर है। तो फिर वह काकभूषणी जी थे, रामलीला में भी थे, तो वो पक्षी वो कहते कि मैं जानता हूं इस मंदिर के निर्माण करता कौन है, इंद्रद्युम्न है। फिर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की स्थापना होती है और जैसे स्थापना होती है तो महाराज इंद्रद्युम्न भगवान से तीन वर मांगते हैं। इंद्रद्युम्न मांगते हैं भगवान से, भगवान से कहते हैं कि हे कृष्णा, हे जगन्नाथ देव, आप मेरे तीन इच्छाओं की पूर्ति कीजिए। तो तीन क्या इच्छाएं थी, मतलब डिवोटीज भगवान से कुछ मांगते तो अपने लिए नहीं, हमेशा जीवों के कल्याण के लिए। इसलिए भागवतम में प्रश्न भी कोई पूछता है तो जीवों के कल्याण के लिए। तो ये इंद्रद्युम्न मांगते हैं कि भगवान मेरी कोई संतान नहीं होनी चाहिए। अभी हम सारे लोग संतान ही चाहते हैं जीवन में। इंद्रद्युम्न ने कहा मुझे कोई संतान ना हो, कोई पुत्र नहीं चाहिए मुझे। हाँ, क्यों नहीं चाहिए कोई पूछे तो महाराज इंद्रद्युम्न कहते हैं कि वो पुत्र या संतान, उनके अंदर ये भावना आ जाएगी कि ये मेरा मंदिर है, भगवान का जो धन ऐश्वर्य आदि है उसका वो क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा, उपभोग करेगा, जो हे कृष्ण आपकी संपत्ति है, इसलिए मुझे क्या नहीं चाहिए, कोई पुत्र आदि नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, आपके जो दर्शन है इस मंदिर के दरवाजे ज्यादातर समय खुले होने चाहिए, मीन्स आपका दर्शन ही जगत के जीवों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए। इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, रात के भगवान के दर्शन आपके लिए ओपन है। और तीसरी चीज भगवान से मांगते हैं कि हे भगवान, आपकी जो उंगलियां हैं वो हमेशा गीली रहनी चाहिए। गीली मीन्स आपको असंख्य मात्रा में भोग अर्पित किए जाएंगे, आपको दिन भर क्या करना है, उनको खाते रहना है, जिसके द्वारा यहाँ आने वाले भक्त भी आपका प्रसाद ग्रहण करने मात्र से इस संसार के विपदाओं से और भव सागर से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के पास इंद्रद्युम्न ये इच्छा व्यक्त करते हैं और भगवान उनकी इच्छा को स्वीकारते हैं। और फिर भगवान जगन्नाथ कहते हैं आपकी कोई भौतिक संतान नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी कृष्ण और बलराम, हम दोनों क्या है, आपके संतान है, और हम साल में एक बार आपके स्थान में आएंगे। गुंडीचा मंदिर है तो भगवान रथ यात्रा में नीलाचल मंदिर से कहां जाते हैं, गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा जो महारानी गुंडीचा का स्थान है, हाँ, जो भगवान उनके पुत्र रूप में वहां निकल पड़ते हैं, इस मंदिर को छोड़कर उस मंदिर में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ की जो लीलाएं हैं असीम है, जिनका वर्णन सारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से किया है, और श्रील प्रभुपाद भी विशेष रुचि रखते थे भगवान जगन्नाथ के कार्यकलापों में। प्रभुपाद ने कहा ये कोई पंडा नाथ नहीं है, ये जगत के नाथ है। प्रभुपाद जब छोटे थे तो हावड़ा रेलवे स्टेशन जाते थे और देखते थे कि जगन्नाथपुरी जाने वाली ट्रेन कितने बजे है और वृंदावन जाने वाली, मथुरा जाने वाली ट्रेन, हमेशा ये दो ट्रेन देखते थे। जाना बचपन में मुश्किल था लेकिन हमेशा ये दो ट्रेन देखा करते थे, और बचपन में ही श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा भी मनाई थी स्वयं, हाँ, कलकत्ता में। तो प्रभुपाद का भी विशेष अनुराग भगवान जगन्नाथ से था, और उनके इस आंदोलन में भगवान के जो पहले विग्रह कोई प्रकट हुए या जिनकी सेवा शुरू हो गई इस इस्कॉन आंदोलन में, तो वो कौन थे? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ बलदेव की महिमा है, जिनका हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे कल भी थोड़े समय के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा महामहोत्सव के, निताय गौ